नमस्कार। सुनो कहानी श्रृंखला में हम अनुदित कहानियों के सीजन में आज आपके लिए लेकर आए हैं एक स्वीडिश कहानी। इसके लेखक हैं ऑगस्ट स्ट्रिंगबर्ग और इसका अंग्रेजी अनुवाद किया था एली सुस्नर ने और हिंदी अनुवाद विजय शर्मा जी ने। प्रस्तुति डॉक्टर स्वाति तिवारी की। तो आइए सुनते हैं एक सुंदर स्वीडिश कहानी पुर्जा। सामान की आखिरी खेप जा चुकी थी। किराएदार क्रेप बैंड हैट वाला जवान आदमी खाली कमरों में अंतिम बार पक्का करने के लिए घूम रहा है कि कहीं पीछे कुछ छूटा तो नहीं। कुछ नहीं भूला, कुछ भी नहीं। वह बाहर सामने के हॉल में गया, पक्का निश्चय करते हुए कि इन कमरों में जो कुछ भी उसके साथ हुआ वह उसे कभी याद नहीं करेगा। और अचानक उसकी नजर कागज के एक अतपन्ने पर पड़ी, एक टुकड़े पर जो पता नहीं कैसे दीवार और टेलीफोन के बीच में फंसा रह गया था। कागज पर लिखावटें थी, जाहिर है एक से ज्यादा लोगों की। कुछ प्रविष्टियां पेन और स्याही से बड़ी स्पष्ट दिखाई दे रही थी, जबकि बाकी दूसरी लेड और पेंसिल से घसीट कर लिखी हुई थी। यहाँ वहां लाल पेंसिल का भी प्रयोग हुआ था। 2 साल में उसके साथ इस घर में जो कुछ भी हुआ था वह उन सब का एक तरह से रिकॉर्ड था। सारी चीजें जिन्हें वह भूल जाने का मन बना चुका था वो सब कुछ उस पर संक्षिप्त में लिखी हुई थी। कागज के एक पुर्जे पर यह एक मनुष्य के जीवन का एक कतरा था। उसने उस पेपर को निकाला। यह पेपर स्क्रिबलिंग पेपर का एक टुकड़ा था, पीला और सूरज की तरह चमकता हुआ। उसने उसे ड्राइंग रूम के कार्निश पर रख दिया और उस पर आंखें गढ़ाकर देखने लगा। लिस्ट के शीर्ष पर एक औरत का नाम था, एलिस। संसार में सबसे सुंदर नाम, जैसा उसे तब लगा था क्योंकि वह उस समय उसकी मंगेतर थी। नाम के बाद एक नंबर था, 1511। लगता है कि यह बाइबल के एक स्त्रोत का नंबर था। स्त्रोत बोर्ड पर उसके नीचे लिखा था बैंक, जहां उसका काम था, उसका पवित्र काम, जिसके द्वारा ही वह अपना मकान, उसकी रोटी और पत्नी और सब उसके जीवन का आधार। परंतु बैंक शब्द पेन से काटा था क्योंकि बैंक फेल हो गया था। हालांकि उसके बाद उसे दूसरा काम भी मिल गया था, परंतु दुश्चिंता और बेचैनी के एक छोटे से अंतराल के बाद अगली प्रविष्टि थी फूलों की दुकान और घोड़ों आदि का खर्च। ये उसकी सगाई से संबंधित थे, जब उसकी जेबों में भरपूर पैसा था। तब आया फर्नीचर डीलर और पेपर हैंगर। उसका घर सजाया जा रहा था। फॉरवर्डिंग एजेंट वे प्रवेश कर रहे थे। ओपेरा हाउस का बॉक्स ऑफिस नंबर 5050 5050। उनकी नई नई शादी हुई थी। इतवार की शामें वे ओपेरा में जाते थे, उनके जीवन के खूब खुशियों के दिन। जब वे शांत और चुपचाप बैठते, उनकी आत्मा परिदेश के सौंदर्य और लत में पर्दे के पीछे मिलती। उसके पश्चात एक आदमी का नाम था जो काटा हुआ था। वह एक दोस्त हुआ करता था उसकी जवानी के समय में, एक आदमी जो सामाजिक तराजू पर बहुत ऊंचा चढ़ा लेकिन गिरा। सफलता के मद में सफलता से बिगड़कर गहन गर्त में, और फिर उसे देश छोड़ना पड़ा। सौभाग्य कितना अस्थिर होता है, कितना अस्थिर था। अब पति पत्नी के जीवन में कुछ नया आया। अगली प्रविष्टि एक स्त्री की लिखावट में थी, नर्स। कौन सी नर्स? हाँ, वही बड़े लबादे और सहानुभूतिपूर्ण चेहरे वाली, जो कभी ड्राइंग रूम से होकर नहीं जाती बल्कि दालान से सीधे बेडरूम में जाती थी। उसके नीचे लिखा था डॉक्टर एल। और अब लिस्ट पर पहली बार कोई रिश्तेदार आया, ममा। ममा यानी उसकी सास। ममा उसकी सास थी, जो उनकी नई नवेली खुशी को भंग न करने के लिए अब तक जानबूझकर दूर थी, लेकिन अब उसकी जरूरत थी और वह आकर खुश थी। बहुत सारी प्रविष्टियां लाल और नीली पेंसिलों से थी। नौकर रजिस्ट्री सा ऑफिस, नौकरानी छोड़ गई थी और एक नई को लगाना है, केमिस्ट, हाँ जीवन में काली माँ आ गई थी, डेयरी मिल्क का ऑर्डर दिया गया, स्टरलाइज्ड दूध, कसाई किराना आदि, घर के काम टेलीफोन से हो रहे थे, मतलब मालकिन अपने पोस्ट पर नहीं थी, नहीं वह नहीं थी, वह लेटी हुई थी। आगे क्या लिखा था वह पढ़ नहीं पाया क्योंकि उसकी आंखों के आगे अंधेरा छा गया। वह नमकीन पानी में से देखता हुआ एक डूबता हुआ आदमी था, फिर भी वहाँ लिखा था बहुत साफ, अंडरटेकर, एक बड़ा ताबूत और एक छोटा ताबूत, और धूल शब्द पर कोष्टक में जुड़ा हुआ था। पूरे रिकॉर्ड का यह अंतिम शब्द था धूल। धूल के साथ वह समाप्त हुआ, और ठीक ठीक यही होता है जिंदगी में। उसने पीला कागज लिया, उसे चूमा, कायदे से तहाया और अपने पॉकेट में रख लिया। 2 मिनट में वह अपनी जिंदगी के 2 वर्ष फिर से जी गया, परंतु उसने घर छोड़ा वह हारा हुआ नहीं था। इसके विपरीत एक प्रसन्न और गर्वित आदमी की तरह वह अपना सिर ऊंचा किए हुए था, क्योंकि वह जानता था कि जीवन की सर्वोत्तम चीज उसे मिली थी और उसे उन सब पर दया आई जिन्हें वे नहीं मिली थी। धन्यवाद। नमस्कार।